यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानिपांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूर्तेर्महद्भिर् इमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कसिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन इस सत्र में। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बलराम जयंती है, बलराम जी का जन्म दिवस, उनका प्राकट्य दिवस है। तो जैसे कि हम सब लोग अवगत हैं कि डेली जो है श्रीमद् भागवतम क्लास होता है, तो उसके जगह पे आज हम बलराम जयंती होने के नाते हम श्रीमद् भागवतम को विश्राम देके हम बलराम जी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, उनके प्राकट्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बलराम जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के जीवन में। हम सभी जानते हैं कि वह एक आदि गुरु हैं बलराम जी। तो बलराम जी का जो ये प्राकट बलराम पूर्णिमा है, जो आज के दिन पे बलराम जी का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है एक्चुअली आज, क्योंकि बलराम जी का प्राकट्य दिवस है जो कि आदि गुरु हैं, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव के लिए, विशेष करके भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, उनके जीवन में जो गुरु का भूमिका है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम बलराम जी के विषय में आज श्रवण करने, जितना हो सकता है उतना हम आपको श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। तो आज जो कि बलराम जी का प्राकट है, तो सबसे पहले हम कुछ चार विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है बलराम जी के प्राकट्य के विषय में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, और दूसरा बलराम जी कौन है उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और साथ साथ में बलराम जी के कुछ पास टाइम, कुछ लीलाएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आज के दिन पे बलराम जी से हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार की कृपा याचना करना चाहिए, इसके विषय में हम इन चार विषयों के ऊपर हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है बलराम जी के प्राकट्य के विषय में, तो हम सब जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही है ना, जैसे कि अभी भागवतम क्लास में ये सृष्टि का कैसे उत्पत्ति हुआ वही चर्चा भागवतम में भी चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही, मतलब जैसे कि स्वर्ग की सृष्टि, भगवान कृष्ण भगवान के द्वारा स्वर्ग की सृष्टि होता है, और उन जो स्वर्ग की सृष्टि है उन 16 तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, विसर्ग की सृष्टि करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी उन 16 तत्वों को लेकर विसर्ग की सृष्टि करते हैं, अर्थात जो जीवात्मा है उनको शरीर प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का ये कार्य है, पूरा दिन वह केवल शरीर प्रदान करते हैं जीवात्माओं को, पूरा दिन वही उनका कार्यकलाप है। तो ब्रह्मा जी के जो सृष्टि है, अर्थात जीवात्माओं को जो प्रदान शरीर प्रदान करने का जो समय है, तो इसको विसर्ग सृष्टि कहा गया है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही दो प्रकार के लोग, हमेशा प्रारंभ से ही दो प्रकार के लोग हैं। कौन है दो प्रकार के लोग? सुर और असुर, है ना। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है, ऐसा नहीं कि आज कोई असुर वृत्ति वाला है तो अभी प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही दोनों लोग थे, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के लोग नहीं रहेंगे तो हम जितने भी भगवान की पाशकाएं भगवान की लीलाएं देख रहे हैं वो नहीं होते, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही दोनों प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर। सुर अर्थात वे लोग जो भगवान के सुर में सुर मिला के चलते हैं, है ना, उसको सुर बोला गया है। अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के निकट है, भगवान के समीप है, उनको क्या कहा जाता है? सुर, है ना। जिसके अंदर देवताओं के गुण है ना, अच्छे गुणों का विकास रहता है, वो जो उनको सुर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, भगवान की लीला कथाओं सुनने में उनका रुचि रहता है, भगवान की सेवा में वो लिप्त रहते हैं, इसलिए उनको सुर कहा गया है। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो है कौन? असुर। असुर अर्थात जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, इस प्रकार की बहुत सारे चीजों को वो व्यक्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता है उसको असुर कहते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार के लोग सृष्टि के प्रारंभ से ही है, है ना, सुर और असुर दोनों सृष्टि के प्रारंभ से ही है। तो सुर और असुर एक प्रारंभ से होने के नाते हमेशा भगवान का जो जन्म है, बलराम जी का जो जन्म है या कृष्ण का जो जन्म है, हमेशा विवादों पूर्ण रहा है, है ना, विवाद पूर्ण रहा है उनका जन्म, उनका प्राकट्य विवाद पूर्ण रहा है। जो सुर है, जो भक्तगण है, वो क्या करते हैं? वो तो भगवान को मानते हैं, उनके जितने भी भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं, भले से वो कितनी भी टेढ़ी लग रही हो कि कुछ भी लग रहा है, लेकिन भक्त लोग उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको श्रवण करते हैं, उसको समझते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर जो है उस प्रकार के गुण विकसित है, है ना, भगवान के समीप रहते हैं, इसलिए भगवान के बारे में जानने की अलग इच्छा है। लेकिन जो असुर लोग हैं वो हमेशा से भगवान का तिरस्कार करते हैं, भगवान का बहिष्कार करते हैं, भगवान है नहीं, है ना, भगवान निराकार ब्रह्म है, इस प्रकार का उन लोग का स्टेटमेंट रहा हुआ है। तो भगवान बलराम जी का जो प्राकट्य है हम कृष्ण की तरह ही विवादपूर्ण ही है, है ना। जैसे कृष्ण का जन्म, कुछ साधारण दृष्टिकोण से लोग, भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि उनका जन्म तो जन्म हुआ नहीं, वो क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट होते, बाद में बालक के रूप में हो जाते हैं, वो देवकी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। तो भगवान बलराम जी का जो प्राकट्य है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो भगवान दो दृष्टिकोण, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, दो दृष्टिकोण से हमको आचार्य लोग समझाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तत्व की दृष्टिकोण से भगवान बलराम जी का जो प्राकट्य है वो कैसे हुआ, है ना, और उसके बाद हम साधारण जो लोग चर्चित जो है कि किस प्रकार से बलराम जी का जो जन्म हो विवादपूर्ण रहा, और उसको आचार्य लोग किस प्रकार से हमको समझाते हैं, उसको भी आचार्य लोग उन लोग को भी समझाते हैं जो भौतिकवादी है, जो उनकी विचारधारा जिस प्रकार से चलती है भगवान बलराम के प्राकट्य के विषय में, तो उस विचारधारा को सही रूप में लेते हुए हमारे आचार्य गण यह समझाते हैं कि कैसे बलराम जी का प्राकट्य हुआ। तो इन दो प्रकारों से हम सबसे पहले बलराम जी का जो प्राकट्य है उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो तत्व के दृष्टिकोण से देखें तो बलराम जी कौन है? आदि गुरु है, है ना। तत्व के दृष्टिकोण से बलराम जी आदि गुरु है। तो बलराम जी आदि गुरु होने के नाते वो सबसे पहले कहां प्रकट होते हैं? देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि देवकी के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? बलराम जी तो रोहिणी नंदन कहलाते हैं, रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। तो आचार्य लोग तत्व के दृष्टिकोण से बताते हैं कि बलराम जी का जो प्राकट्य है देवकी के गर्भ में क्यों हुआ। पहले डायरेक्ट हो सकता था, रोहिणी के गर्भ भी डायरेक्ट हो सके, वहां से भी जन्म हो सकता था, उनका प्राकट्य हो सकता था, लेकिन बलराम जी देवकी के गर्भ में क्यों आए इसके बारे में आचार्य लोग बताते हैं कि बलराम जो है आदि गुरु है। आदि गुरु है तो एक गुरु जो होता है ना, वह आदि गुरु होने के नाते बलराम जी वह देवकी के गर्भ में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि देवकी के हृदय को पवित्र करना था। क्यों क्यों पवित्र करना था? क्योंकि कृष्ण का प्राकट्य वहां पे होने वाला था, हाँ, कृष्ण आने वाले थे वहां पे। तो ये जो बलराम जी का जो प्राकट्य है कृष्ण जन्माष्टमी से लगभग 8 दिन पहले हुआ, बलराम जी का प्राकट, तो सबसे पहले देवकी के गर्भ में प्रकट होने का जो रीजन है, जो आचार्य लोग बताते हैं कि बलराम जी आदि गुरु हैं, आदि गुरु होने के नाते वो देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में पहले प्रकट हुए और उन्होंने उनके हृदय को पवित्र किया। तो यह गुरु का कार्य होता है। जैसे कि हम भक्त भी पिछले एक महीने से जन्माष्टमी के अलग अलग सेवाओं में स्थित है। कोई डोनेशन कलेक्शन के लिए जा रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है, तो कोई हार बना रहा है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे जन्माष्टमी के दिन करना है, कोई डेकोरेशन का, कोई इस प्रकार का अनेक 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 सेवाओं में सब भक्त लोग पिछले एक महीने से या डेढ़ महीने से वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो सेवाएं है, एक्चुअली ये जो सेवा करने से ना हमारा हृदय पवित्र होता है। ये सेवा कहां से हमको प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और गुरु के माध्यम से प्राप्त किया हुआ ही सेवा हमको करना चाहिए, तभी जाके हमारा हृदय पवित्र होगा। अगर हम डायरेक्ट कृष्ण के साथ संबंध रखेंगे, डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध रखेंगे, तो हमारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गुरु के माध्यम से ही हमको उन सेवाओं को करना चाहिए। तो उन सेवाओं को अगर गुरु के माध्यम से हम उन सेवाओं को प्राप्त करके करते हैं, तो क्या होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, ताकि जन्माष्टमी के आने से पहले हमारा हृदय के अंदर जो कचड़ा है वो क्लीन हो सके, हृदय पवित्र हो सके, ताकि हम कृष्ण का जो प्राकट्य, कृष्ण जन्म का को अपने हृदय में उनको प्रकट कर सके, है ना। हम भक्तों को कृष्ण का जो प्राकट्य अपने हृदय के अंदर करना है, इसलिए हृदय के अंदर अगर करना है कृष्ण का प्राकट्य, तो हमको क्या करना है, हृदय को पवित्र करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुरु तो हो सकता है कि गुरु तो डायरेक्टली हमको सेवा नहीं देते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी को एक बार किसी एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद मैं आपका संग बहुत ज्यादा संग करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी संगति आपके साथ साथ में ज्यादा समय तक रहूंगा तो मेरा जो भक्ति में प्रगति है वो बढ़ जाएगा, प्रगति होगा। तो इस प्रकार से उसने इच्छा व्यक्त किया, तो प्रभुपाद जी ने उनको यह बोला कि वास्तव में तुम अगर मेरी संग को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे निर्देशों का पालन करो और मेरे वाणी जो मैंने बोला हूं उसका पालन करो, है ना, मेरे ग्रंथों को पढ़ो, है ना। ये वास्तव में प्रभुपाद जी बोले, संग मतलब वास्तव में संगति करना ये हुआ, ऐसा नहीं कि तुम मेरे साथ साथ में चलोगे तभी संगति प्राप्त होगा, तो मेरे निर्देशों का तुम पालन करो। तो ऐसे ही हमको जो सेवा प्राप्त हुआ है गुरु के किसी न किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा, हमको जो उनका प्रतिनिधि है उनके द्वारा हमको सेवा प्राप्त हुआ है। जैसे कि अथॉरिटी, मंदिर के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अथॉरिटी है, उसको गुरु ने वहां पे नियुक्त किया है, तो उनके नियुक्त होने के कारण वो जो सेवा हमको प्रदान करते हैं वो किसकी सेवा है, गुरु की सेवा है। तो उनके द्वारा प्रदत्त जो सेवा है, अथॉरिटी के द्वारा जो प्रदत्त सेवा है, ये किसके द्वारा है, वह गुरु के द्वारा प्रदत्त सेवा है। इसलिए हम जो भक्त लोग जितने भी प्रकार का जो भी सेवा कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, अल्टीमेटली वो गुरु की सेवा होता है। तो गुरु के द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं हम अगर, तब जाके हमारा जो हृदय है वो पवित्र होता है। तो ऐसे ही हम जन्माष्टमी का प्रिपरेशन पिछले एक महीने से कर रहे हैं, है ना। तो एक महीने से हम अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से गुरु के द्वारा प्रदत्त वो सेवा है, तो निश्चित रूप से ये हमारा हृदय जो है पवित्र होगा और तब जाके वहां पे कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो यह गुरु का कार्य है। तो बलराम जी आदि गुरु होने के नाते वो देवकी के गर्भ में पहले प्रकट हुए और वहां पे उनके हृदय को पवित्र किया, और उसके बाद भगवान की योग माया की शक्ति, योग माया शक्ति के कारण उनका स्थानांतरण कहाँ पे हुआ, रोहिणी के गर्भ में हुआ। तो इस प्रकार फिर जाके रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। तो ये जो स्थानांतरित किया गया योग माया के प्रभाव से, इसलिए बलराम जी का एक नाम पड़ा संकर्षण, है ना। और समस्त बलों के स्रोत, जितने भी हम बल मतलब शक्ति का जब स्मरण करते हैं, है ना, शक्ति का जब स्मरण करते हैं, बल अर्थात वो कहां से आता है, वो बलराम जी से आता है, वो सभी बल के स्रोत है, इसलिए उनका नाम बलराम है। और स्थानांतरित होने के कारण उनका जो नाम पड़ा हुआ संकर्षण है। तो इस प्रकार से बलराम जी आदि गुरु होने के नाते वह देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और देवकी के हृदय को पवित्र किए और उसके बाद भगवान की योग माया जो शक्ति है उसके द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए और फिर जाके वहां पे रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। ये तो आचार्य लोग बताते हैं कि तत्व के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से बलराम जी का जो प्राकट्य सबसे पहले देवकी के गर्भ में हुआ। लेकिन साधारणतः लोग जो विवाद बना हुआ है संसार में कि लोग ऐसा करते हैं कि बलराम जी सबसे पहला विवाद है कि बलराम जी का प्राकट्य कितने दिन पहले हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी से, तो इसके बारे में क्लियर आचार्य लोग यह भी बताते हैं कि 8 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, 8 दिन पहले ही बलराम जी का प्राकट्य हुआ था। मतलब 8 दिन बड़े हैं कृष्ण से, 8 दिन बड़े हैं बलराम जी। तो साधारणतः लोग क्या कहते हैं कि रोहिणी, क्योंकि सब जानते हैं कि बलराम जी किनके पुत्र है, रोहिणी के पुत्र है, तो रोहिणी के पुत्र है तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वसुदेव जो रोहिणी के जो पति वसुदेव जी, वसुदेव और देवकी तो कारागृह में थे, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक पत्नी पति के बिना गर्भ को धारण कर सकती है। ये साधारणतः दृष्टिकोण लोगों का कि अगर बलराम जी रोहिणी नंदन है तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि जो वसुदेव जी थे वो तो कारागृह, कंस ने उनको बंदी बना के रखा था। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक जो पति के बिना एक स्त्री पत्नी गर्भ को धारण कर सकती है, ये संभव नहीं है। तो आचार्य लोग इस बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से उनका व्याख्या देते हैं, समझाते हैं। उनका कहना सही, उनका सोचना सही है ना, कि ये संभव नहीं है कि रोहिणी जो है वसुदेव के बिना गर्भ को धारण कर लिया, ये संभव नहीं है। तो आचार्य लोग यह बताते हैं कि वसुदेव वह कारागृह में बंद थे, जेल में बंद थे, है ना। कंस ने वो जेल में क्यों बंद थे आप सबको पता है ना, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा, है ना, कंस का। तो इसलिए कंस ने डरवश उन दोनों को जेल में बंद करके रखा। तो आचार्य लोग बताते हैं कि हम जब जेल शब्द का, जब जेल शब्द बोलते हैं, जेल तो हमको क्या स्मरण आता है, एक चार दीवार है ना, उसके अंदर लोखंड का गेट लगा रहेगा, उसके अंदर व्यक्ति बंद रहता है और कोई मिलने जा नहीं सकता, जा भी सकता है तो बीच में है ना लोहे का दरवाजा लगा रहता है, वहां से थोड़ा बातचीत करके निकल जाता है। तो आचार्य लोग बताते हैं कि ये आज के समय का वो जेल, वो कारागृह नहीं था। वो कौन सा कारागृह था कि उस समय का कारागृह कैसा था, वो महल था, महल। क्योंकि जो कंस था वो कंस कहां पे हो, कंस तो राजा था ना, तो कंस राजा था तो वो बड़े महल था उसका, और वो उस महल में वो देवकी और वसुदेव को रखा हुआ था। तो वो आज के जैसे कारागृह नहीं था, वो महल था। हाँ, हालांकि महल था भले से, लेकिन वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी इसको बहुत टाइट करके रखा हुआ था कंस ने, लेकिन वो महल था, आज के जैसा जेल नहीं था वो, है ना। इसलिए और वासुदेव जो थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना, वो भी एक महान पुरुष थे। तो हम साधारणतः अभी भी हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई नेता, कोई MLA, कोई बड़ा व्यक्ति जो कुछ गुनाह किया तो क्या करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। तो क्या उसको जेल में डाल के उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति को देते हैं, नहीं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था, शायद उनके घर में भी इतना व्यवस्था नहीं हो, वो उतना व्यवस्था देते हैं जेल के अंदर। तो ये तो MLA एक साधारण एक भौतिकतावादी व्यक्ति को इस प्रकार का ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जाता है, तो वसुदेव जी थे, वो राजा थे, इतने महान पुरुष थे, तो उनको कैसे जेल में इस प्रकार से रखा जाएगा। तो महल था, जेल नहीं, वो कारागृह नाम था लेकिन वह महल था। तो महल होने के नाते वहां पे सारी सुख सुविधाएं थी, इसलिए जो वसुदेव की अन्य पत्नियां थी जो कि अलग अलग जगहों पर रहती थी, जैसे रोहिणी व नंद महाराज के इधर रहती थी यशोदा के साथ में, तो अन्य पत्नियां जो कंस के डर से भयभीत होकर अलग अलग जगहों पर रहती थी, तो बीच बीच में वह वसुदेव जी को मिलने आया करती थी। आचार्य गण बताते हैं कि जब रोहिणी ने गर्भ को धारण किया तो वही समय था जब वो मिलने आई थी वसुदेव से, और तब उसने गर्भ को धारण किया। तो बहुत सुंदर इस प्रकार से आचार्य लोग हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी का जो जन्म, बलराम जी का प्राकट्य किस प्रकार से रोहिणी के गर्भ से हुआ। तत्व के दृष्टिकोण से और साधारण दृष्टिकोण से भी हमको इस प्रकार से बताते हैं। तो बलराम जी जो है कृष्ण के जन्म के 8 दिन पहले उनका प्राकट्य हुआ। और एक दृष्टिकोण से आचार्यगण बताते हैं, लीला के दृष्टिकोण से, कि बलराम जी का प्राकट्य पहले क्यों हुआ, है ना, पहले क्यों, 8 दिन पहले क्यों हुआ बलराम जी का प्राकट्य। तो आचार्यगण बताते हैं कि पिछले जन्म में जो बलराम जी थे वो कौन थे, लक्ष्मण थे, छोटे भाई, बोलो राम जी के छोटे भाई थे। तो छोटे भाई होने के नाते वो उनको बहुत तकलीफ था भगवान की सेवा करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पालन करना पड़ता था राम जी का, बोल दे नहीं करना तो नहीं करना है ना, इस प्रकार से बहुत, क्योंकि बलराम जी जो कौन है, आदि गुरु है और साथ साथ में वो सेवक भगवान है बलराम जी, तो हमेशा कंटिन्यूसली वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए जब लक्ष्मण छोटे भाई थे इसलिए उनको राम की बातों को पालन करना ही पड़ता था, कभी कभी वो सेवा करने के लिए मना कर देते थे कि नहीं मत करो ऐसा, तो सुनना पड़ता था, है ना। इसलिए और विशेष करके आचार्य बताते हैं कि लक्ष्मण को वह समय सबसे दुखदायी लगा, सबसे बड़ा कष्ट उनके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट वही था कि जब भगवान राम ने बोला कि सीता को जाके जंगल में छोड़ के आओ, ये उनके लिए सबसे कष्टदायक विषय था, उनको हो नहीं पा रहा था उनसे, क्योंकि माता समान सीता को कैसे जंगल में छोड़ के आए, लेकिन कौन बोला है, प्रभु राम ने बोला है, है ना, उनकी वचनों का पालन करना है, लेकिन उनके अंदर इतना तकलीफ था। तो आचार्य अगर बताते उस तकलीफ को उन्होंने सहन तो किया, उस समय सीता को ले जाके वन में छोड़ा, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि नेक्स्ट जब जन्म मैं लूंगा ना कभी भी छोटा बन के नहीं लूंगा, क्या मैं बड़ा ही बन के रहूंगा। इसलिए आचार्य गण बताते हैं लीला की दृष्टि से बलराम जी का जो प्राकट्य है ना वो 8 दिन पहले हुआ, तो ज्यादा बड़े नहीं थे बलराम जी, 8 दिन ही बड़े थे। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, बलराम कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार कई प्रवचनों में अपने इस बात को बताए हैं, विशेष करके कृष्ण बलराम मंदिर में भी कृष्ण विग्रह के सामने बैठ कर प्रवचन देते देते इस बात को बताए कि जो कृष्ण बलराम है इन दोनों कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर की बात करते थे प्रभुपाद जी, एक ही केवल करते थे कि अंतर है तो बस इतना ही अंतर है कि कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी सफेद वर्ण के हैं, है ना, काला और गोरा यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है कृष्ण बलराम में। तो ये भगवान ही है, लेकिन वह कौन से भगवान है, सेवक भगवान है। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है सेवक भगवान है, और सेवक भगवान होने के नाते वह भगवान का जो सेवा जो है ना वो सभी रसों में करते हैं, है ना। तो 5 प्रकार के रस है, कौन कौन से रस है 5 प्रकार से, 5 प्रकार के, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस। तो इन 5 प्रकार के रूप में भगवान बलराम जो है कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे शांत रस में कैसे वो सेवा करते हैं भगवान की, जैसे कि यह टेबल है, व्यास आसन है, ये टेबल है, जितनी भी वस्तुएं कृष्ण की सेवा में लगी है वो कौन है, वो बलराम जी है। इसलिए कभी कभी हम जब ही मान लीजिए टेबल पड़ा है कभी कोई उसमें पैर लग जाता तो हम उसको प्रणाम करते हैं, प्रणाम अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो साक्षात बलराम जी है। तो जितने भी वस्तुएं कृष्ण की सेवा में लगी हुई है वो कौन है, बलराम जी है। तो इस शांत रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, वो भगवान की सैया बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं बलराम जी, जिसके ऊपर भगवान जी विश्राम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो शांत रस में और दास्य रस में वो कभी कभी उनके चरण कमलों को वो दबाते हैं। हालांकि बड़े थे लेकिन आप देखेंगे कि जब वृंदावन की लीला में जब वो गौचारण की लीला में जाते थे तो कृष्ण कभी कभी थक जाते थे तो बलराम जी उनके पांव को दबाते थे। तो यहां से हमको पता चलता है कि वह दास रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं और साथ साथ में सख्य के रूप में, वो हम सभी लोग अवगत हैं कि किस प्रकार से उनके बाल सखाओं के साथ किस प्रकार से उनकी लीला चलती रहती थी, सख्य रूप में और वात्सल्य रूप में। और भगवान बलराम जो जी है वात्सल्य, एक माता की तरह वो केयर भी करते थे कृष्ण को, है ना, क्योंकि बड़े थे, है ना, बड़े भाई थे तो वात्सल्य के रूप में उनको मौका मिला ना अभी, इसलिए तो बड़े बने सारे रसों में वो सेवा करने के लिए, इस बार बड़े के रूप में अवतार लिया उन्होंने, है ना, बड़े के रूप में प्रकट हुआ उनका। तो वह वात्सल्य रूप में भी वो कृष्ण ने खाया कि नहीं, टाइम हो चुका है, हाँ खेल रहा है, उसको बुला के लाके उनको खिलाना, चलो कलेवा करने का टाइम हो चुका है। तो इस प्रकार से जैसे एक माता अपने पुत्र को ध्यान देती है ना, एक पिता अपने पुत्र को ध्यान देता है, उसी प्रकार से बलराम जी जो है वो कृष्ण का ध्यान रखते थे। उन्होंने सही से खाया कि नहीं, टाइम पे सोया कि नहीं, हाँ सारे चीजें उनका है। इस प्रकार से एक माता पिता अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं, इस प्रकार से बलराम जी कृष्ण के ध्यान है। तो इस वात्सल्य रूप में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं और साथ साथ में माधुर्य रूप में। तो माधुर्य रूप में किस प्रकार से बलराम जी सेवा करते हैं कृष्ण का, वह गोपी बन जाते हैं। कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए आचार्य लोग बोलते हैं कि माधुर रूप में वो अनंग मंजरी के रूप में वह ओके वो कृष्ण के संतुष्टि प्रदान करते हैं, है ना, उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो माधुर रूप में भी, अनंग मंजरी के रूप में भी बलराम जी प्रकट होकर वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस पांच प्रकार के रसों में भगवान बलराम जी जो है वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भगवान बलराम जी जो कि आदि गुरु है, वो सभी गुरुओं के जो बल का जो स्रोत है, विशेष करके आध्यात्मिक जो शक्ति सारे गुरुओं में आता है, कहां से आता है, उसके स्रोत कौन है, भगवान बलराम जी है। बल मीन्स आध्यात्मिक शक्ति, है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी जो है वो आदि गुरु है, और आदि गुरु होने के नाते वह सबसे पहले उनका प्राकट्य हुआ, और ताकि कृष्ण जन्माष्टमी का कृष्ण के प्रकट्य करा सके हमारे हृदय में, इसलिए वह बलराम जी का प्राकट्य होता है। तो कृष्ण और बलराम इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के पहला जो विस्तार है वो बलराम जी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान कौन है, कृष्ण है, है ना, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो है वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनका सबसे पहला विस्तार जो होता है वो बलराम जी है, और उसके बाद फिर चतुर्भुज, उसके बाद फिर नारायण, फिर जो भी तीन विष्णु, इस प्रकार से सारे चीजें, मतलब कि बलराम जी, बाकी सारे चीजें बलराम जी से आते हैं। कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी, उसके बाद जितने भी विस्तार हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, सारे वो बलराम जी से ही आते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी का जो प्राकट्य का के विषय में इस प्रकार से आचार्य लोग हमको बताते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। तो सबसे पहला वो कौन सा हो गया, अभी बलराम जी का प्राकट्य, है ना, प्राकट्य के विषय में हमने सुना। अभी जब बलराम जी प्रकट होते हैं तो वह कुछ बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं भी करते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर भगवान बलराम लीला भी करते हैं। तो बलराम जी कभी भी कृष्ण को छोड़ते नहीं थे, एक्चुअली हमेशा कृष्ण के साथ में ही जाते थे। ऐसा बहुत कम समय आया जो कि भगवान बलराम जो बलराम जी है वो कृष्ण के साथ नहीं जाते थे। तो आज के दिन पे, विशेष करके आज का जो दिन है, जिस दिन आज बलराम जी का प्राकट्य है, वह जन्मदिन है, तो इस दिन माता ने क्या किया, उनको रोक दिया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम गैया को चराने मत जाओ, है ना, उनके बहुत उनका सेवा करने के लिए, या उनको, है ना, जन्मदिन रहता है तो सब लोग छुट्टी करते हैं, आज के समय में तो कोई करता नहीं है, लेकिन विशेषता अगर विशेष दिन है तो निश्चित रूप से वो छुट्टी करते हैं, विशेष करके जन्म दिवस पे लोग छुट्टी करते हैं। तो माता ने उनको रोक दिया, हाँ रोक दिया कि आज तुम गौचारण के लिए मत जाओ। तो कृष्ण निकल गए गौचारण के लिए बाकी और भी ग्वाल बाल मित्रों के साथ। तो आज के दिन पे ही जो ये एक लीला घटित हुआ, वो कौन सी लीला घटित हुआ आज के दिन पे, ब्रह्म विमोहन लीला। क्योंकि आज के दिन बलराम नहीं गए थे, है ना, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्म विमोहन लीला जो कि आप सब लोग अवगत है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम इस लीला का थोड़ा से वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि ये जो ग्वाल बाल मित्रों के साथ जो खेल रहा है, एक दूसरे का जूठा खा रहा है, ये साक्षात वो कृष्ण है करके उनको यह विश्वास नहीं हुआ। एक साधारण व्यक्ति होगा, एक साधारण बालक होगा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है विमोहित हो गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो कृष्ण है, बालक जो है, भगवान है। तो विश्वास न होने के कारण उनका जो है मति भ्रम हो गया, और उन्होंने क्या किया कि ग्वाल बाल मित्रों के साथ जब कृष्ण गैया को चराने गए, तो दोपहर के समय में वो कलेवा करने के लिए, सब लोग बैठ के प्रसाद खाने के लिए एकजुट बैठ के बैठे हो, तो उस समय क्या हुआ कि गैया जो है वो चरने के लिए चरते चरते बहुत दूर चली गई और इतना दूर चली गई कि वह दृष्टिगोचर नहीं हुई। तो बाकी जो ग्वाल बाल मित्र थे वो सब देखकर बहुत चिंतित होने लगे कि गैया किधर चली गई। वो लोग एकदम चिंतित हो कि गाय जो था गाय से विशेष प्रेम था ग्वाल बालों का और जैसे ही गैया का दर्शन नहीं हुआ करके वो बहुत विचलित हो गए सारे ग्वाल बाल। और हालांकि बैठ के और प्रसाद खा रहे थे एक दूसरे को खिला रहे थे बहुत सुंदर तरीके से बहुत दृश्य था वो फोटो में भी हम देखते हैं जो कलेवा करते समय बहुत सुंदर दृश्य था। तो इस प्रकार के बैठे थे लेकिन गैया जब दिखी नहीं तो सारे ग्वाल बाल जो है बहुत चिंतित हो गए और चिंता होने के कारण वो तुरंत ही कलेवा करना बंद कर दिए और बंद कर दिया उन्होंने। तो बोले कि कृष्ण कृष्ण वो गैया पता नहीं किधर चली गई दिख नहीं रही है हम उनको ढूंढ के लाते हैं। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से चिंता ग्वाल बाल व्यक्त किए तो भगवान कृष्ण ने देखा कि कितना विचलित हो गए सारे हमारे मित्रगण। तो उन्होंने क्या किया एक काम करो तुम लोग अच्छे से प्रसाद पाओ खाओ तुम लोग कलेवा करो मैं देखता हूं मैं ढूंढ के लाता हूं। तो इस प्रकार के कृष्ण बोलने के बाद तुरंत निकल पड़े गैया को ढूंढने के लिए। और तभी क्या हुआ और गैया वो दूर नहीं चले गए थे वो क्या किए थे ब्रह्मा जी ने उनका अपहरण कर लिया था चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने। तो कृष्ण ढूंढते रहे ढूंढते 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 बहुत आगे गए फिर उसके बाद नहीं मिला तो वापस आए और जब कृष्ण उधर गए तो इधर क्या हुआ ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया चुरा के लेके चले गए है ना। कृष्ण की परीक्षा लेना था उनको है ना क्या ये वास्तव में कृष्ण है क्या। तो इस प्रकार से जैसे ही कृष्ण इधर आके चले ग्वाल बाल मित्र भी गया तो कृष्ण तो तुरंत समझ गए लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया तुरंत ही क्योंकि अभी कैसे जाएंगे गैया के बिना घर पे कैसे जाएंगे और मित्रों के बिना कैसे जाएंगे उनकी माताएं क्या बोलेंगी बछड़ों को चढ़ा रहे थे तो बछड़े नहीं आएंगे तो उनकी जो गैया है किस प्रकार से मैं उनको क्या जवाब दूंगा माताओं को क्या जवाब दूंगा मैं अकेले जाऊंगा। तो तुरंत ही कृष्ण ने क्या किया जितने भी ग्वाल बाल थे उनको उनका अपना विस्तार कर दिया सभी ग्वाल बाल को अपने रूप में और उतना ही बछड़ों का भी विस्तार कर दिया और उसके बाद वह निकल पड़े घर के लिए। तो अभी इधर क्या हुआ कि जैसे ही ये बालक और वो बछड़े अपने अपने माताओं से मिले ना तो वो उन दो आपस में उनका प्रेम जो है ना वो बहुत प्रगाढ़ दिखने लगा क्योंकि जो ब्रज के जितने भी लोग थे ना वो अपने पुत्र से ज्यादा किसको प्रेम करते थे कृष्ण से प्रेम करते थे है ना अपने पुत्र से ज्यादा वो कृष्ण को प्रेम करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि अपने पुत्र को बहुत प्रेम कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये साक्षात कृष्ण ही है। तो पूरे एक साल तक ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए लेके गए होंगे चुरा के लेकिन ब्रह्मा के काल के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पे एक साल बीत चुका था। तो एक साल तक भगवान कृष्ण ने सारे माताओं के स्तनपान किया कृष्ण ने और उन एकदम आनंदित हो रहे थे क्योंकि वो साक्षात कृष्ण थे बछड़े के रूप में भी थे और बाल बाल मित्रों के रूप में भी थे। तो इस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे का प्रेम देख के जो है ना बलराम जी को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इस प्रकार का प्रेम तो नहीं देखा क्योंकि सब लोग कृष्ण के ओर भागते थे है ना कृष्ण को देखते थे अपने पुत्रों को तो छोड़ के वो कृष्ण आया तो कृष्ण की तरफ चले जाते थे उनको ही देखने में लग जाते थे लेकिन आज अपने अपने पुत्रों से इतना कैसे प्रेम इतना कैसे आ सकती। तो बलराम जी को डाउट हुआ जब उन्होंने पूछा कृष्ण से तब कृष्ण ने उसका विस्तार रूप से वर्णन किया। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो देखते हैं अभी क्या हुआ है ना कृष्ण कि अभी क्या किया जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे सबके सब है सब अपने घर पे सारे ग्वाल बाल भी है और बछड़े भी है। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि कहीं गोडाउन में से भाग के तो नहीं आ गए तो भाग के वापस गए देखे उधर भी है इधर भी है। अभी तो ब्रह्मा जी का बुद्धि काम करने नहीं लगा एकदम और वो समझ गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है ना। उस दिन ये ब्रह्म विमोहन लीला होना था इसलिए उस दिन बलराम जी नहीं गए क्योंकि अगर बलराम जी जाते तो वो तो विमोहित नहीं हो सकते थे ब्रह्मा जी के चंगुल में नहीं फंस सकते थे। अगर ब्रह्मा जी प्रयास भी करते ना तो बलराम जी तो चार में से कम तीन सर तो तोड़ ही देते उनके। तो इस प्रकार से जो है उस दिन बलराम जी नहीं गए तो उस दिन ब्रह्म विमोहन लीला ये हुआ। तो अभी ब्रह्मा जी आके देखे और तुरंत ही वो समझ गए और तुरंत ही समझ गए और उन्होंने तुरंत ही भगवान के शरण को ग्रहण किया और तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगे माफी मांगने लगे कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया आपके चरणों में मुझे क्षमा करिए प्रभु मैंने मुझे समझने के लिए बहुत देर हो गया है ना आप मुझे क्षमा करिए। तो इस प्रकार से क्षमा याचना करते हुए जो है तभी कृष्ण ने क्या किया, एक्चुअली क्षमा मांगने से पहले कृष्ण ने जब ही ब्रह्मा जी विचलित हो चुके थे, मतलब कि उनको लगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी है वहां पे भी है ना, उसके बाद जब भी उनको अनुभूति हुआ कि मैंने अपराध किया, तो उस समय सारे जितने भी बछड़े जितने बालक थे भगवान ने उन ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया था वहां पे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझ गए और समझ के वो तुरंत ही भगवान के चरण कमरों में प्रार्थना करने लगे कि मैंने आपके चरणों में कितना बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करिए। और उसके बाद भगवान ने उनको क्षमा किया, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है इस प्रकार के। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी शरणागत हुए, उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दंड नहीं दिया, उनके ऊपर कृपा किया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी को दंडित करते ही नहीं है, चाहे वो असुर हो चाहे असुर हो, कितना बड़ा भी पापी हो, भले से ही भगवान को नहीं मानता हो, कितना भी बड़ा पाप कर्म में लगा हो, लेकिन कृष्ण जो है कभी भी किसी को दंड नहीं देते हैं। ये दंड शब्द कृष्ण के डिक्शनरी में है ही नहीं एक्चुअली, तो कभी किसी को दंडित नहीं करते, वो कृपा करते हैं। तब ब्रह्मा जी हालांकि इतने बड़ा अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, लेकिन कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा किया है ना, कृष्ण कृपा किया उनके ऊपर। और प्रभुपाद जी हम कुछ दिन पहले कुछ तात्पर्य को पढ़ रहे थे मतलब भागवतम के समय, तो प्रभुपाद जी वहां पे वर्णन करते हैं कि जो कृष्ण जो है वो हमेशा जो है ना वो पोषण करते हैं, हमको आश्रय प्रदान करते हैं, हर एक जीवात्मा को, चाहे जीवात्मा भक्ति में लगा हुआ है या न लगा हुआ हो, सभी का पालन पोषण कृष्ण करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि उनकी कोई भक्ति नहीं करता है तो वो उनको दंडित करते हैं। दंड तो हमको प्रकृति देती है ना, हमारी जो स्वतंत्रता है ना, हमको हर एक जीव का अपना अपना स्वतंत्रता भगवान ने दिया है, तो उस स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति हमको दंड देती है, और उसका सदुपयोग करते हैं तो हम दंडित नहीं होते हैं। तो हम अपनी स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग करते हैं तो हमको प्रकृति दंड देती है, भगवान दंड नहीं देते हैं। अरे वो तो प्रकृति दंड देती है, मान लीजिए प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति गलत काम करता है उसको शुकर का शरीर मिल जाता है, लेकिन वो शुकर का शरीर में भी भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि उस सुअर को भी कौन पालन पोषण कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं, है ना, उनको उस परिस्थिति में भी भगवान ही उनको भोजन प्रदान कर रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं उनको, तो एक कृपा है भगवान का। तो भगवान कभी भी दंडित नहीं करते हैं, हर एक जीवात्माओं के ऊपर वह कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी को यह अनुभूत हुआ कि हमने कितना बड़ा घोर अपराध कर दिया भगवान के चरण कमलों में, तो जब उन्होंने प्रार्थना करने लगे तो फिर भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा किया और ये लीला जो है ब्रह्म विवहन लीला जो कि आज के दिन पे संपन्न हुआ है ना, बलराम जयंती के दिन ये लीला संपन्न हुआ। तो अभी बलराम जी के दूसरे लीला के विषय में हम चर्चा करेंगे कि बलराम जी का विवाह, विवाह के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, बलराम जी का विवाह कैसे संपन्न हुआ। तो उनके विवाह के बारे में वर्णन आता है बलराम जी के कि सतयुग में रैवत नाम के एक राजा थे है ना, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती है ना, सतयुग में रैवत नाम के एक राजा जिनकी पुत्री जिनका नाम रेवती था, वह इतना सुंदर कन्या थी और विशेष करके जो राजा राजा जो थे रैवत, वो उस कन्या के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे ना, उसके लिए योग्य वर वो ढूंढ ढूंढ के परेशान थे, कोई मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने सतयुग की बात है, सतयुग की घटना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्री को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए है ना, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हमारी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, कृपया आप हमें गाइडेंस दीजिए, बताइए किससे शादी कराए इसका। तो इस प्रकार से वह ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको कुछ क्षणों तक रुकना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी किसी मीटिंग में व्यस्त थे, पूरा दिन काम करते हैं ब्रह्मा जी भी, तो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। तो कुछ क्षणों के बाद, कुछ क्षणों पश्चात ब्रह्मा जी बाहर निकल के आए तो देखे कि महाराज राजा रैवत जो है कि आए हुए पुत्री के साथ। तो जैसे ही महाराज रैवत ने इस प्रस्ताव को रखा ब्रह्मा जी के पास कि मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर कोई नहीं मिल रहा है, कृपा करिए आप और हमको कोई रास्ता बताइए, योग्य वर बताइए जिससे मैं अपनी पुत्री का जो हाथ उसके हाथ में दे सकूं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कृपा याचना करने के पश्चात तो ब्रह्मा जी देखने लगे, अरे तुम क्या कर दिया, यहां पे आए तुमको पता नहीं कि वहां पे क्या क्या हो चुका है। अरे सतयुग युग युग निकल गया, अभी सतयुग तो गया ही, त्रेता भी गया, अभी द्वापर शुरू हो गया। तो क्योंकि तुम ब्रह्म लोक में आए हो, यहाँ की काल गणना और वहां का जो समय है ना बहुत अंतर है। तो महाराज रैवत ने बोला कि अभी क्या करें हमें, अभी कैसे होगा फिर मेरी पुत्री का विवाह। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि अभी जो द्वापर में जाओ तुम, बलराम जी प्रकट हुए हैं, बलराम जी आए हुए हैं, तो तुम उनके पास जाकर इस प्रस्ताव को रखो और अपनी पुत्री जो रेवती है उनका जो विवाह का प्रस्ताव है वो बलराम जी के पास रखो, उनसे शादी कराओ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार उनके गाइडेंस से महाराज रैवत तुरंत ही यहाँ पे आए। यहाँ पे आए वो बलराम जी को मिले और बलराम जी से इस प्रस्ताव को रखा तो कि आप मेरी पुत्री का पाणि ग्रहण करिए, है ना, उनके हाथ को आप लीजिए, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करिए, है ना, उनसे शादी करिए। तो जब इस प्रकार से महाराज दैवत ने ये प्रस्ताव जब रखा तब बलराम जी देखने लगे ऐसा, क्योंकि वो सतयुग का शरीर थे ना, तो रेवती जो थी बहुत लंबी थी और बलराम जी तो कम हाइट के थे और लंबी थी, तो इस प्रकार से देख रहे थे जो इससे शादी करो, इससे शादी करना है। तो बलराम जी देख के आश्चर्य हो गए कि इससे कैसे शादी करें, इनके साथ कैसे रह सकते हैं। तो रैवत महाराज की कृपा याचना से उन्होंने रेवती को स्वीकार किया और तुरंत ही बलराम ने अपने हल को लिया और रेवती के कंधों पर रखा और खींच दिए और बराबर की हो गई। बलराम जी बोले अब बराबर है। तो इस प्रकार से महाराज रैवत के और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार महाराज रैवत ने बलराम जी के पास प्रस्ताव रखा और इस प्रकार से उनका जो विवाह है वो रेवती के साथ संपन्न हुआ। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में कहा गया है, कृपया मेरे बात दोहराइए, नमस्ते तो हलग्राम, नमस्ते तो हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते भक्तवत्सल। तो इस प्रकार से जो रेवती कांत बलराम जी जो कि रेवती का जो विवाह है वह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। नमस्ते तो हलग्राम अर्थात वो हल को धारण करने वाला, उसका आयुध जो है वह हल है, है ना। नमस्ते तो हलग्राम, नमस्ते मुसला, मुसल को धारण करते हैं, और नमस्ते रेवती, रेवती के जो पति है रेवती कांत है, और जो भक्त वत्सल भगवान, ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी का जो है विवाह संपन्न हुआ। और बलराम जी के भी, बलराम जी भी क्योंकि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है इसलिए बलराम जी भी रासलीला करते हैं, है ना। बलराम जी की भी गोपियां हैं, वो गोपियां हैं जो कृष्ण कृष्ण की गोपियों से अलग हैं, है ना। बलराम की अलग गोपियां जिनके साथ वो रासलीला करते हैं। तो एक बार की घटना है कि भगवान बलराम जो है वृंदावन में वह अपने गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने यमुना जी को, यमुना जी का स्मरण किया और यमुना जी को प्रकट होने के लिए उन्होंने इस प्रकार का उनसे प्रार्थना किया बलराम जी। तो उस समय यमुना देवी ने क्या सोचा कि अरे बलराम जी जो है, अरे ये तो वारुणी को पीते हैं, वो हमेशा नशे में रहते हैं, वहां पे जाना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा सोच कर यमुना जी ने क्या किया, वो गई नहीं बलराम जी के पास। और तुरंत ही जब ये देखा बलराम जी की यमुना जी मेरे बुलाने के बाद नहीं आई, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने हल से वो यमुना जी के कई 100 विभाग करने के लिए उन्होंने सोच लिया, है ना, काटने लगे यमुना जी को, कट कट करने लगे। तो तुरंत ही यमुना जी तुरंत ही प्रकट हुई और फिर से उनके शरणागत हो गई। भगवान बोला कि मैं आपको समझ नहीं पाई थी प्रभु, कृपया हमको क्षमा करिए, है ना। फिर भगवान ने क्षमा किया, क्षमा इसलिए किया क्योंकि वो दंड नहीं देते हैं, है ना, कभी वो दंडित नहीं करते हैं, है ना। कितना कृपालु है, भक्तवत्सल है भगवान बलराम जी, है ना, कृपा करते हैं। एक्चुअली गुरु जो होता है वो हमेशा शिष्य के ऊपर कृपा ही करता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता लग सकता है कि गुरु जो हमको डांट रहे हैं, लेकिन वास्तविक में अगर गुरु की हमारे ऊपर कृपा है तो हमको समझना चाहिए कि अगर वो डांट रहे हैं तो रियल कृपा है हमारे ऊपर, है ना। तो जो डांटना भी वो उनका कृपा होता है एक्चुअली। तो इस प्रकार से तुरंत ही यमुना जी उनके शरणागत हो गए और बलराम जी ने उनके ऊपर कृपा किया, है ना। कितना कृपालु है बलराम जी, है ना। उपवास भी दोपहर तक ही है, है ना, ज्यादा तकलीफ नहीं है, दोपहर तक ही उपवास है। कृष्ण जन्माष्टमी, इतना कृष्ण टेढ़े हैं, है ना, सब कुछ टेढ़ा है उनका, तो उपवास भी करते हैं तो कितना तकलीफ होता है ना, दूसरे दिन तक सुबह तक उपवास करता है। तो इस प्रकार से बहुत कृपालु है बलराम जी, भक्त वत्सल है वो। उनका जो कड़कनेस भी है, हम देख रहे हैं कि उनको मार दिया, कई असुरों को भी मारा है उन्होंने, तो ये वो भी उनके ऊपर कृपा है, है ना। तो गुरु जो होता है वो शिष्य के ऊपर हमेशा कृपा ही करता है। अगर डांट पड़ रही तो हमको समझ जाना चाहिए कि विशेष कृपा है, है ना। हमको छोड़ नहीं देना चाहिए कि डांट रही कैसे, क्या है, क्यों है, इस प्रकार का हम बहुत सोचते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं। लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखना चाहिए कि डांट पड़ रहा है मतलब विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से बलराम जी ने यमुना जी के ऊपर कृपा किया। उसके बाद वृंदावन में विशेष करके बलराम जी दो असुरों का उन्होंने वध किया, तो उन दो असुरों के विषय में भी हम संक्षिप्त से सुनेंगे। तो एक समय की बात है कि जो ग्वाल बाल मित्र है वो गैया को चराते चराते उनके मन के अंदर ऐसा इच्छा हुआ कि ताल वन में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने ताल वन की महिमा को किसी ने किसी से सुना कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे जो फल है वो ताल के वो प्राप्त होंगे। तो एक्चुअली जो बाल सखाए थे उन्होंने यह सोचा कि ताल वाल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे फलों को वो कृष्ण बलराम की सेवा में हम लोग लगाएंगे। लेकिन ग्वाल बाल मित्र अगर यह बोलेंगे कि हमको आप दोनों की सेवा में लगाना है फल को, तो कृष्ण और बलराम कभी भी जाते ही नहीं ताल वाल में। लेकिन उन्होंने यह इच्छा व्यक्त किया कि हमको फल को खाना है, है ना, इस प्रकार की इच्छा व्यक्त किया कि हमको लेके चलिए ताल वन में, वहां पे हम फल को खाएंगे। तो इस प्रकार से ग्वाल बालों की इच्छा को देखकर कृष्ण ने सारी गायों को और सारे ग्वाल बालों को किधर घुमा दिया, ताल वन की तरफ। और वहां पे ताल वन जो था यह कंस का जो उद्यान था, जहां पे उसने कंस ने एक असुर को नियुक्त किया था। वह असुर का नाम क्या है, धेनु का असुर, है ना, गधे के रूप में था। ऐसे भी असुर गधे होते हैं, सारे असुर गधे होते हैं, लेकिन ये इसका रूप भी गधा का था इस असुर का। तो धेनु का असुर के रूप में वहां पे वह उस उद्यान का जो कंस का जो उद्यान था उसकी रक्षा करता था धेनु का असुर। तो जैसे ही कृष्ण बलराम अपने सखाओं मित्रों के साथ उस वन में प्रवेश किए तो वहां पे उन्होंने तुरंत ही ताल के जो वृक्ष थे उसको जोर जोर से हिलाया और बहुत सारे फल वहां पे गिरने लगे। इस आवाज को सुनकर जो धेनु का जो गधा था वो क्या रहा, जाग गया। उसको हुआ कि कोई तो आया हुआ है हमारे प्रॉपर्टी में, है ना, उसको इस प्रकार का आभास हो गया और तुरंत ही वो धेनुकासुर निकल के आया। और है ना, किस प्रकार से है ना आवाज करते हैं गधे, किस प्रकार से आवाज करते हैं, तो आवाज करते हुए बहुत जोरों से क्रोधावेश होकर वह तुरंत ही निकला और तुरंत ही उसने अपने पीछे से अपना गधा जो होता है ना पीछे से लात मारते वार करते हैं, तो तेज दौड़ के घूम के पीछे से लात मारा, है ना। लेकिन वहां पे बलराम जी ने तुरंत ही उस गधे को पकड़ लिया, धेनुकासुर को पकड़ लिया, उनके पैर को पकड़ लिया, है ना। सबको ये घटना सुन सुन के ना सबको कृष्ण लीला का कार्टून है ना वो सब ध्यान आता होगा ना कैसे घुमा घुमा के बहुत सुंदर कार्टून बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है उसको घुमा घुमा के मार डाले धेनुकासुर को। अभी धेनुकासुर तो मर गया, अभी बड़ा असुर था, ये देखकर और भी बहुत सारे गधे थे वहां पे, वो लोग भी जागृत हो गए, अरे मेरे हमारे स्वामी हमारे मृत्यु हो गई, मार डाला। तुरंत ही वो लोग भी एक झुंड में वो अटैक किए, लेकिन वहां पे फिर कृष्ण बलराम दोनों में मिल मिलके सारे गधों को मार डाला। तो विशेष करके ये जो असुर हैं, तो असुर जो है ना, ये असुरों का दमन की जब लीला हम सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर जो अनर्थ है, जैसे कि यहाँ पे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर का टीका रखते हुए कि जो ये धेनुकासुर है, ये हमारे अंदर जो लोभ है, लोभ की जो इच्छा है ना, सब कुछ प्राप्त किसी को न देने की इच्छा, क्या हो जाता था, कुछ मित्र ग्वाल बाल मित्र अगर कुछ फलों को खा लेते थे तो, और वैसे भी वह लोड करके कहाँ जाता था, कंस की सेवा में जाता था, तो उसमें से थोड़ा बहुत ही सही, चलो ठीक है खा लेने दो, छोटे छोटे बालक हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो लोभ की इच्छा है, सब कुछ इकट्ठा करने की इच्छा है, ये इस प्रकार के जो हमारे ये अनर्थ है हमारे अंदर, तो ये धेनुकासुर के जब हम कथा को श्रवण करते हैं, धेनुकासुर के लीला को श्रवण करते हैं, तो ये जो लोभ नामक जो अनर्थ है हमारे अंदर वह निकल जाता है। तो इस प्रकार से तालवन में भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध किया, और उसके बाद भगवान बलराम ने एक और असुर का वध किया, कौन सा है, प्रलंबासुर, है ना, प्रलंबासुर का असुर, वो जो असुर था वो ग्वाल बाल मित्र का रूप धारण करके आया था। ये भी कृष्ण बलराम गैया को चराने के लिए निकले गए थे ग्वाल बाल मित्रों के साथ, तो हमेशा क्या करते थे, गाय चरते रहते थे, वो क्या करते थे, वो खेल कूदा करते थे, कलेवा करते थे, हाँ खाते पीते थे मस्त से, बहुत सारे खेलों को खेला करते थे। तो इस प्रकार से वो एक खेल खेल रहे थे जिसमें कि जो व्यक्ति जो ग्वाल बाल जो मित्र अगर हारेगा तो क्या करेगा, वह घोड़ा बनेगा, उसके ऊपर जो जीता हुआ है वो उसके ऊपर बैठेगा और उसको लेके चलेगा वो। तो यह मौका देखते हुए जो प्रलंबासुर था वह देखा कि जो ग्वाल बाल उस दिन नहीं आया हुआ था, मतलब है ना, कोई कोई नहीं भी आते थे ना, माता उनको रोक लेती थी या कुछ, बस रुक जाते थे वो, तो जो ग्वाल बाल मित्र नहीं आए थे उनका रूप धारण करके वो उनके इस खेल में वो शामिल हो गया प्रलंबासुर, और वो शामिल हो गया, और उन्होंने किसके साथ में, दो पार्टी बनाया गया, एक बलराम जी का एक कृष्ण का। तो ये जो प्रलंबासुर था एक ग्वाल बाल मित्र का रूप धारण करके आया, तो वह कृष्ण के पार्टी में पहुंचा, क्योंकि उसको मालूम था कि कृष्ण जो है बहुत बलवान है ना, उसके साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, है ना, लेकिन वो इसलिए वो कृष्ण के साथ रहा, है ना, कृष्ण के साथ। तो अभी क्या हुआ कि ये जो है जो खेल था उसमें यह हार गया, कौन, ये जो प्रलंबासुर जो ग्वाल बाल मित्र के रूप में आया था, हार गया। तो क्या हुआ, घोड़ा बनना पड़ा, है ना, घोड़ा बनना पड़ा, तो कौन बैठा उनके ऊपर, बलराम जी बैठे, है ना, क्योंकि वो जीत गए थे। तो वो लेके जा रहा था, तो बलराम जी तो एक्चुअली में कोई भी असुर किसी भी रूप धारण करके आता था ना, कृष्ण बलराम को तुरंत समझ जाते थे, और तुरंत समझ जाते थे, उनको ये पता था कि चलो अभी इसका नाश करेंगे, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि कृष्ण बलराम जब ही गौचारण लीला में जाते थे तो जो कलेवा करने से पहले ना किसी न किसी असुर को मार के ही कलेवा करते थे, रोज किसी न किसी असुरों का वर्णन करते थे। भागवतम में तो कुछ कम असुरों का वर्णन है, लेकिन प्रतिदिन किसी न किसी असुर का वर्णन वध करते थे वो। तो तुरंत समझ गए एक्चुअली, जो बाल बाल के रूप में आया हो टीम में शामिल हुआ ना कृष्ण बलराम, तो तुरंत समझ गए, लेकिन फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसका दमन करते हैं, है ना। इस प्रकार से वह घोड़े के रूप में उनके ऊपर बलराम जी बैठे घोड़े के ऊपर, और वो लेके जाना शुरू किया, और फिर क्या हुआ, बलराम जी धीरे 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 इतना भारी होने लगे, बलराम जी इतना भारी हुए कि वो सहन नहीं कर पाया, और सहन नहीं करने का मतलब उसका जो रियल स्वरूप है ना वो प्रकट हो गया बलराम जी के केवल दबाव से। तो इस प्रकार से वह तुरंत ही बलराम जी ने फिर वो बलराम जी के साथ युद्ध करने लगा, और बलराम जी ने उस असुर का भी दमन किया। तो इसके बारे में है कि ये जो प्रलंबासुर है वह हमारे अंदर जो काम क्रोध और पद प्रतिष्ठा की जो ये अनर्थ है, ये इस कथा को सुनने से हमको ये अनर्थ हमारे अंदर धीरे धीरे से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी जो कि अनेकों लीला, एक बार की घटना है कि वो हस्तिनापुर में है ना, दुर्योधन की पुत्री जो कि लक्ष्मणा थी, है ना, दुर्योधन की पुत्री, और उससे विवाह करने के लिए बहुत सारे राजाएं जो इच्छा व्यक्त किए थे कि लक्ष्मणा से विवाह करने के लिए, बहुत सुंदर थी, तो बहुत सारे जो राजा लोग थे वो लक्ष्मणा से विवाह करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो कृष्ण के पत्नी जांबवा थी, जिनका
पुत्र सांब जो था वो क्या किया, वो लक्ष्मणा का हरण करने के लिए, क्योंकि उसको भी था कि मैं लक्ष्मणा से विवाह करूंगा, और बहुत सारे और भी राजाए थे ऐसे, तो उसने क्या किया कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं लक्ष्मणा का हरण कर लेता हूं। तो इस प्रकार से सांब जो है ना वो लक्ष्मणा का हरण करने के लिए निकल पड़ा, और वहां पे जो लक्ष्मणा को तुरंत ही उसने किडनैप किया, वहां से लेके निकलने लगे। तभी क्या हुआ, दुर्योधन और बाकी जितने भी कौरव थे वो सब लोग मिलकर सांब को पकड़ के बंदी बना दिया, बंदी बना दिया। तो उस समय क्या हुआ, बंदी बना के उन्हें बहुत बुरी तरह से बंदी बनाया, बांध के रख दिया है ना, कि इस प्रकार से तुम अपहरण करके कैसे लेके जा सकते हो। और ये जब बात पता चला अग्रसेन महाराज को, उग्रसेन महाराज को, कि सांब जो है बंदी बन गया, सांब के दादाजी बंदी बन गया, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही आदेश दिया बलराम जी को कि जाओ सांब को वापस लेकर आओ। कौरवों ने उनको बंदी बना लिया है। तो इस प्रकार का आदेश पाते ही बलराम जी और साथ साथ में महाराज अग्रसेन क्या किया, और भी सैनिकों का आदेश दे दिए कि बलराम के साथ जाओ और वहां पे युद्ध करना पड़े युद्ध करो और उनको पराजित करो, वहां से सांब को लेकर आओ। इस प्रकार से आदेश पाकर तुरंत ही बलराम जी ने क्या किया, सैनिकों के साथ, एक्चुअली बलराम जी अकेले ही जाना चाहते थे क्योंकि दुर्योधन कौन था, बलराम जी के शिष्य थे। तो बलराम जी चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं उसको बहुत शांति से समझा के वापस लेके आऊंगा सांब को। लेकिन अग्रसेन महाराज ने सारे सैनिकों को भी भेज दिया साथ में, और उसके अग्रज जो लीडर है वो बलराम जी को बना दिया, जाओ जाके सांब को वापस लेकर आओ। तो अभी सारे सैनिकों के साथ जब बलराम जी जाने लगे, जैसे ही दुर्योधन के महल के पास वो पहुंचे तो सारे सैनिकों को उन्होंने रोक दिया कि अभी तुम लोग यहीं पे रुको, कुछ करना मत, मैं जाता हूं, क्योंकि दुर्योधन जो है मेरा शिष्य है ना, मैं उसको समझाऊंगा, प्रेम से समझाऊंगा, अगर मान गया तो युद्ध करने की क्या जरूरत है ना, उसको समझा बुझा के मैं वापस लेके आऊंगा। तो बलराम जी गए और वो दुर्योधन को समझाए कि तुम सांब और लक्ष्मणा को दे दो हमें, महाराज अग्रसेन का ये ऑर्डर है, तुमने किस सांब को किस तरह से क्यों बंदी बना लिया। और इस प्रकार से बलराम जी उनसे पहले तो रिक्वेस्ट किए कि तुम्हारा हित इसी में है कि तुम लक्ष्मणा और सांब को छोड़ दो। तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, क्रोध का कि ये तो विरुद्ध है नियम के, और क्रोध वश उन्होंने क्या किया, बात को नहीं माना। तो बलराम जी ने क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत ही अपने हल को उठाया और हल को उठाकर पूरा हस्तिनापुर को उठा डाला। हाँ, जैसे कोई एक बुलडोजर है ना, क्रेन है, वो कैसे किसी घर को उठा देता है ना, किसी बड़े बड़े से इमारत को कैसे उठा देता बहुत आसानी से, ऐसे ही बलराम जी अपने हल को लेकर पूरा हस्तिनापुर को, पूरा बुलडोजर सिटी डोजर पूरा सिटी को ही उठा डाले। और इस प्रकार को जैसे ही बलराम जी ने इस प्रकार का किया, हाहाकार मच गया है ना, कि बलराम जी क्रोधित हो गए, तुरंत ही सारे लोगों ने उनका शरण ग्रहण किया कि प्रभु प्रभु आप हम आपको समझ नहीं पाए थे, आपके बल को मैं हम जान नहीं पाए थे, हम समझ नहीं पाए, कृपया हमारे ऊपर कृपा करिए, इस प्रकार आपका मत करिए। और उसके बाद भगवान तो कृपालु है, दंड तो देते नहीं है, और फिर बलराम जी ने कृपा किया और तब जाके, और कैसे कृपा किया, तुरंत ही सब लोगों ने किसको लेके आया, सांब और लक्ष्मणा को सामने रखा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, उनको लेके जाइए। और इस प्रकार से बलराम जी वहां से हस्तिनापुर से वहां पे सांब और लक्ष्मणा को लेकर आए। और एक बार की लीला घटना है कि बलराम जी रास लीला कर रहे थे अपने गोपियों के साथ, उनकी गोपियों के साथ, तो एक बानर जो था वो उनके दिविद नाम का एक वानर था, गोरिल्ला वानर, वो उनके जो दिविद नाम का एक वानर था, वो लीला कर रहे थे, तो वो क्या करता था, पेड़ के ऊपर चढ़ के वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। बंदर कैसे करते हैं, पेड़ को पकड़ के इतना जोर जोर से हिलाते हैं, बंदर वृंदावन में ज्यादा देखने को मिलता है, हम प्रसाद पाते रहते हो वो छत के ऊपर इतना जोर जोर से कूदते हैं, लोग ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे अभी थाली में तो इस प्रकार से वो बहुत जोर जोर से पेड़ों को हिलाता था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था, ये असुर था, एक्चुअली असुर था, बानर के रूप में था, बलराम जी को डिस्टर्ब कर रहा था, तो बहुत बहुत सारे बाधाएं डाल रहा था, कभी कभी वो पत्तों वहां के फलों को तोड़ के उधर फेंकता था बलराम जी के ऊपर। तो बहुत बलराम जी लीला कर रहे तो उनको पता चल रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है, वो थोड़ा से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसको बढ़ते ही जा रहा है ना। बंदर रूपा जी बोलते हैं कि वृंदावन में जाके जो भोग करता है ना उसको बंदर का शरीर मिलता है ना, बंदर का शरीर मिलता है वृंदावन में ही मिलता है, बंदर का शरीर मिलता है। इसलिए वृंदावन कभी भी धाम में जाकर हमको भोग वृत्ति नहीं रखना चाहिए, भोग नहीं, क्योंकि धाम जो है वो तपस्या का स्थान है, हमको वहां पे जाकर तपस्या करना चाहिए है ना। अपने भक्ति वर्धक जो भी नियम विधि बनाया गया उसको कड़कता से पालन करना चाहिए, भोग दृष्टि से कभी भी हमको धाम में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दिवित बानर था वो क्या कर रहा था, बलराम जी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो बलराम जी ने एक पत्थर उठाया, उसको फेंका उसके ऊपर और तुरंत ही वो हट गया, हट के और वो क्या किया, वो पत्थर को पकड़ लिया, मतलब हट गया, उसको लगा नहीं लेकिन पत्थर को पकड़ लिया और पत्थर को वापस फेंका उसने उनके ऊपर, वापस फेंका। बलराम जी सोचे कि अभी इसको तो कुछ तो करना पड़ेगा, अभी सुनेगा नहीं लगता है। तो तुरंत ही बलराम जी ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ के एक मुक्का जोर से मारा तो गिर पड़ा बानर, लेकिन उसके अंदर साहस इतना था क्योंकि वो आया ही था वो बलराम जी से लड़ने के लिए, और तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और बलराम जी ने फिर उसको मुक्के के प्रहार से उसका वध किया इस बानर का। तो इस प्रकार से बलराम जी ने जितने भी असुरों का, मैं एक तो प्रवचन कृष्णांतों का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि बलराम जी ने उन्हीं असुरों का वध किया जिस असुर को कृष्ण को नहीं मारना था एक्चुअली। जैसे धेनु का असुर के बारे में बताते हैं कि वो बलि महाराज के खानदान से था और भगवान ने वचन दिया कि बलि महाराज के कितने असुरों को मैं नहीं मारूंगा, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो बलराम जी जिन असुरों को मारे है वो कहीं ना कहीं वो कृष्ण को नहीं मारना था, इसलिए उन असुरों को बलराम जी ने मारा। और ऐसे ही रुक्मी को भी बलराम जी मारा, कृष्ण मार सकते थे, बदमाश था है ना, हम जानते हैं कि रुक्मी कौन था, रुक्मिणी का भाई था कृष्ण का साला, तो कृष्ण नहीं मारा वहां पे, क्यों, क्योंकि कृष्ण अगर मारेंगे तो कौन रुक है, होम मिनिस्टर दुखी हो जाएगी, घर पर झगड़ा हो जाएगा, घर टूट जाएगा, इसलिए बलराम जी मारे। और उस समय ऐसा है कि जब भी रुक्मी को बलराम जी मारे ना तभी तो कृष्ण जो है ना एकदम न्यूट्रल थे, क्योंकि अगर वो दुख व्यक्त करेंगे ना तो उधर रोहिणी रुक्मिणी दुखी हो जाएगी, अरे बलराम जी दुखी हो जाएंगे, अरे दुख व्यक्त कर रहा है मतलब मेरे साथ नहीं था ये, और खुशी होंगे कि वो मृत्यु हो गया उसका खुश होंगे, तो इधर रुक्मिणी दुखी हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन असुरों को बलराम जी ने मारा जिन असुरों को कृष्ण को नहीं मारना था। तो हमें आज के दिन पे जो कि बलराम जयंती है, बलराम जी का जन्मदिन है, विशेष करके जब भी प्रकट वाला जी जो दिन होता है, प्रकट जो दिवस होता है, उस दिन बहुत कृपालु होते हैं, और वैसे भी बलराम जी बहुत कृपालु हैं, है ना। तो आज के दिन पे हमको, हम भक्तों को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम सबसे पहले उनके प्राकट्य के विषय में सुनेंगे और उसके साथ साथ में हम बलराम जी कौन है हम उनके बारे में सुने, बलराम जी आदि गुरु है, किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, सेवक भगवान है, पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं, और साथ साथ में बलराम जी के कई सारे पास्ट टाइम्स को हम लीला को सुने। और अंतिम जो चौथा है वह यह है कि हमको आज के दिन में बलराम जी से क्या प्रार्थना और कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी आचार्य और तिरुभाव का जो दिन रहता है ना, आचार्यों का जब आविर्भाव का दिन रहता है तब हम उस दिन उनसे उनके लीला और उनके पास टाइम को पहले सुनते हैं और उन्होंने किस प्रकार से उनका संबंध भगवान के प्रति था, किस प्रकार से जो उनकी निष्ठा भगवान के प्रति थी, और उस चीज को हम श्रवण करते हैं पहले, और श्रवण करते करते फिर हमको ये पता चलता है कि हमको किस प्रकार से उनसे कृपा याचना करना चाहिए, है ना। एक उनकी जो निष्ठा भगवान के प्रति है उसमें से एक बूंद मात्र भी हमको प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आज के दिन जो कि बलराम पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, तो बलराम जी का प्रकट स्वाभाविक है कि बलराम जी बहुत प्रसन्न है आज, है ना। तो आज के दिन में हमको बलराम जी को प्रार्थना हमको कैसे करना चाहिए, हमको बलराम जी से कृपा यह मांगना चाहिए, किस रूप में मांगना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के रूप में कृपा मांगना चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि बलराम जी ने क्या किया, बहुत सारे असुरों को जो परेशान किया उसको मार दिया, है ना। कभी कभी ये आसुरी जो प्रवृत्ति है ना हमारे अंदर भी आ जाती है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति होगा तो निश्चित रूप से उसका दमन बलराम जी करेंगे, लेकिन ये जो नित्यानंद को हमको बलराम जी को इस विशेष दिन पे हमको उनको नित्यानंद प्रभु को रूप में देखते हुए हमको उनको कृपा की याचना करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो मार खा के भी कृपा की है ना, उन्होंने मार खाया लेकिन फिर भी वो किसी को मारे नहीं, उनके ऊपर कृपा की है। तो विशेष रूप में आज के दिन में, क्योंकि इसलिए नित्यानंद प्रभु कौन है, वह अक्रोध परमानंद, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम है ना। तो अक्रोध, उनके अंदर कोई क्रोध नहीं है नित्यानंद प्रभु, केवल कृपा 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 ही भरा है उनके अंदर, बिल्कुल क्रोधित नहीं होते नित्यानंद प्रभु। और बलराम जी जो है सब क्रोध है ना, वो क्रोधित होते हैं, जैसे कि हमको उनकी लीलाओं और पास्ट टाइम में देखा किस प्रकार से हस्तिनापुर को यमुना जी को इस प्रकार का करने के लिए तैयार हो गए। तो आज के दिन में, आज के इस विशेष अवसर पे, विशेष दिन पे हमको बलराम जी को नित्यानंद प्रभु के रूप में हमको प्राप्त है, क्योंकि नित्यानंद और बलराम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम जैसे बद्धात्माओं के लिए, हम जैसे इस पापी लोगों के लिए जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में, हमको उनसे कृपा याचना करना चाहिए। और इस प्रकार से आज का जो विशेष दिन है, हमको इस प्रकार से बलराम जी से प्रार्थना, ताकि वह भी हमारे हृदय में, जिस प्रकार से वह देवकी के हृदय में प्रकट हुए और उनके हृदय को निर्मल बनाए, उसी प्रकार से आज बलराम जी भी हमारे हृदय में प्रकट हो, उनकी प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हृदय में जितने भी कलमश है, जितने काम क्रोध है, लोभ मद मत्सर, ये सारे चीजें उसका दमन करे, ताकि ये सब दमन होने के पश्चात जो है कृष्ण का जो जन्म है वह हमारे हृदय में हो सके। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बलराम जयंती की, भगवान बलराम जी की जय, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।